सुर्खी है खरब। कहानी है वह सब कुछ जो पहले टूटना जरूरी था, विफलताएं, दिवालियेपन के करीब के पल और वे दांव जिन्हें कोई और छूना तक नहीं चाहता था। यहाँ है यह सफर साल दर साल। हर्षल दसानी द्वारा 1971 एलन रीव मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में होता है। पिता इंजीनियर और माँ मॉडल्स हाहार विशेषज्ञ। किताबों में डूबा रहने वाला जुनूनी बच्चा जो मनोरंजन के लिए विश्वकोश पढ़ता है, उसे इतनी बुरी तरह सताया जाता है कि एक पिटाई उसे अस्पताल पहुंचा देती है। 12 साल की उम्र तक वह खुद कोडिंग सीख लेता है और ब्लास्टर नाम का एक गेम एक पत्रिका को करीब $500 में बेच देता है। 1989 17 साल की उम्र में अमेरिका पहुंचने की ठाने और रंगभेदियों की सेना में सेवा करने को तैयार न होकर वह अपनी कनाडा में जन्मी माँ की नागरिकता के सहारे कनाडा चला जाता है और अनाज फावड़े से उठाने तथा एक आरा मिल में बॉयलर साफ करने जैसे छोटे मोटे कामों से गुजारा करता है। 1995 स्टैनफोर्ड में भौतिकी की PhD में दाखिला मिलता है, पर शुरुआती इंटरनेट के पीछे भागने के लिए वह 2 ही दिन में पढ़ाई छोड़ देता है। अपने भाई किम्बल के साथ वह Zip2 की स्थापना करता है, अखबारों के लिए एक ऑनलाइन सिटी गाइड और मैपिंग टूल। जेब खाली होने पर दोनों भाई दफ्तर में ही सोते हैं और YMCA में नहाते हैं। 1999 कॉम्पैक Zip2 को $307 मिलियन नकद में खरीदता है। 27 की उम्र में मस्क का हिस्सा करीब $22 मिलियन बैठता है। वह तुरंत लगभग $10 मिलियन X.com में लगा देता है, एक ऑनलाइन बैंक जो आगे चलकर PayPal बनेगा, और हनीमून पर बाहर रहते हुए उसे CEO पद से हटा दिया जाता है। 2002 ईबे PayPal को $1.5 बिलियन में खरीदता है, जिससे मस्क को करीब $180 मिलियन मिलते हैं। रिटायर होने के बजाय वह यह पैसा 3 असंभव से दिखते दावों, SpaceX, टास्ला और सोलर सिटी में बांट देता है और अगले 6 वर्षों में उसका लगभग पूरा हिस्सा वापस उन्हीं में झोंक देता है। 2008 उसके जीवन का सबसे बुरा साल। SpaceX के पहले 3 फाल्कन 1 लॉन्च विफल हो जाते हैं। वित्तीय संकट में टास्ला दिवालियेपन से बस कुछ हफ्ते दूर है और उसकी शादी टूट जाती है। उसके अपने कहे अनुसार वह रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए दोस्तों से पैसे उधार ले रहा है। 28 सितंबर 2008 चौथे प्रयास में आखिरी जितने का पैसा बचा था फाल्कन 1 कक्षा में पहुंच जाता है। कुछ ही हफ्तों बाद नासा SpaceX को $1.6 बिलियन का रीसप्लाई अनुबंध देता है और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर टास्ला एक बचाव राउंड पूरा करता है। दोनों कंपनियां कुछ ही दिनों के अंतर से बच जाती हैं। 2010 ड्रैगन कैप्सूल के साथ SpaceX किसी अंतरिक्ष यान को कक्षा में भेजकर वापस धरती पर लाने वाली पहली निजी कंपनी बन जाती है। टास्ला अपना IPO लाती है। 1956 में फोर्ड के बाद सार्वजनिक होने वाली पहली अमेरिकी कार निर्माता। 2012 ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ता है, ऐसा करने वाला पहला व्यावसायिक यान जो SpaceX को एक स्टार्टअप से बदलकर एक असली नासा ठेकेदार बना देता है और साबित कर देता है कि निजी अंतरिक्ष उड़ान काम करती है। 2015 आग भरी कई दुर्घटनाओं के बाद पहली बार एक फाल्कन 9 का पहला चरण धरती पर सीधा खड़ा होकर उतरता है। रॉकेटों का पुन उपयोग, जिसे लंबे समय तक असंभव कहकर खारिज किया गया था, अचानक हकीकत लगने लगता है और पूरे लॉन्च उद्योग का अर्थशास्त्र बदलने लगता है। 2018 उस समय धरती का सबसे शक्तिशाली परिचालन रॉकेट फाल्कन हैवी अपनी पहली ही उड़ान भरता है और उस पर सवार होती है मस्क की अपनी चेरीलाल टास्ला रोडस्टर, जो एक कार और स्पेस सूट पहने उसके पुतले की ग्रह के पार तैरते हुए तस्वीरें वापस भेजती है। 2020 टेस्ला टोयोटा को पीछे छोड़कर इतिहास की सबसे मूल्यवान कार निर्माता बन जाती है और क्रू ड्रैगन नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा तक ले जाता है। 2011 में स्पेस शटल के रिटायर होने के बाद अमेरिकी जमीन से पहला मानवयुक्त लॉन्च और किसी निजी कंपनी द्वारा अब तक का पहला। 2022 मस्क एक अराजक मुकदमेबाजी से भरे सौदे में ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदते हैं, उसका नाम बदलकर एक्स रखते हैं और उसे कारोबार व राजनीति का सबसे बुलंद लाउडस्पीकर बना देते हैं। 2024 स्टारशिप के पांचवें परीक्षण में लॉन्च टावर की विशाल भुजाएं लौटते हुए सुपर हैवी बूस्टर को हवा में ही पकड़ लेती हैं, विज्ञान कथा का हकीकत बन जाना और इसी दौरान स्पेसएक्स मानवता द्वारा कक्षा में भेजे जाने वाले कुल द्रव्यमान का 80% से अधिक संभालने लगती है। 2026 एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन जाते हैं क्योंकि स्पेसएक्स का रिकॉर्ड शेयर बाजार पदार्पण और टेस्ला व बाकी कंपनियों में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी एक एक करके दोबारा लगाए गए दावों से बनी दौलत को साकार कर देती है। असली बात पैटर्न है, हर जीत के बाद उसने फिर से शुरुआत की, हर एग्जिट का एक एक पैसा उसने अगले दाव में लगा दिया। 2008 में वह लगभग सब कुछ गवा बैठा था। यह खरब किसी विरासत में मिली बढ़त का इनाम नहीं है, यह वही है जो कंपाउंडिंग तब दिखती है जब एक इंसान बार बार अपनी पूरी जमा पूंजी सामने खड़ी सबसे कठिन भौतिक समस्या पर लगाता रहता है। सफर ही संदेश है। यह ब्लॉग केवल जानकारी और सामान्य रुचि के लिए है, यह निवेश सलाह नहीं है और न ही किसी कंपनी या प्रतिभूति के बारे में कोई सिफारिश। आंकड़े और तारीखें सार्वजनिक स्रोतों से ली गई हैं। यह सामान्य जानकारी है, कोई निवेश सलाह नहीं।